नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। सरकार ने कहा, हाल के वर्षों में बेरोजगारी दर में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से इस वर्ष की नीट यूजी परीक्षा में भौतिकी के एक प्रश्न से संबंधित एनटीए के फैसले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभिनव बिंद्रा को उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से पुरस्कृत करेगी। और श्रीलंका के दाम्बुला में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज शाम भारत का सामना नेपाल से। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
वर्ष 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह लगातार सातवीं बजट प्रस्तुति होगी। अपने बजट पूर्व परामर्श के दौरान वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बैठकें की, जिनमें किसान और मजदूर संघ, कृषि अर्थशास्त्री, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ के अलावा रोजगार और कौशल, व्यापार तथा सेवाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल थे। परामर्श के दौरान वित्त मंत्री ने विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बजट तैयार करते समय उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की कॉपी राज्यसभा में भी रखी जाएगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा और ये 2047 तक भारत को विकसित बनाने के अभियान की नींव बनेगा। बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को दी गई गारंटी लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
केंद्रीय बजट 2024-25।
आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 पर होगा विस्तृत विश्लेषण।
सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार।
बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक 23 जुलाई मंगलवार सुबह 9 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी गोल्ड पर।
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा।
बजट से पहले वित्त मंत्री ने कल संसद के दोनों सदनों में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन का अवलोकन दिया गया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% तक ले आई है। अखिल भारतीय उद्योग संघ ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 6.5-7% की वृद्धि का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की आशावादी छवि दिखाता है। संगठन के अध्यक्ष डॉ विजय कलंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई की पहचान अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में की गई है, जो बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण में एमएसएमई क्षेत्र के डिजिटीकरण और विनियमन पर बल दिया गया है। डॉ कलंत्री ने आर्थिक वृद्धि को हवा देने के लिए अमृतकाल में नवीकृत नीति में 6 क्षेत्रों पर ध्यान देने की सराहना की है। ये 6 क्षेत्र हैं कृषि, एमएसएमई, निजी निवेश, हरित परिवर्तन वित्त, शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर दूर करना और सरकारी नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए क्षमता बढ़ाना। सरकार ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर में हाल के वर्षों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। कल लोकसभा में लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 4.2% थी। ये दर 2021-22 में 4.1% और 2022-23 के दौरान 3.2% रही। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली से इस वर्ष की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भौतिकी के प्रश्न के दो विकल्पों को सही उत्तर मानने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के फैसले पर अपनी राय देने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेषज्ञ टीम को आज दोपहर 12 बजे तक शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के समूह में भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए ग्रेस अंक देने पर सवाल उठाया था। इसमें कहा गया है कि 44 उम्मीदवारों को अस्पष्ट प्रश्न के कारण पूर्ण अंक मिले थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि एनटीए का प्रतिपूरक अंक देने का निर्णय उसके अपने निर्देश के खिलाफ है, जिसमें छात्रों को नवीनतम एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का पालन करने के लिए कहा गया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य और पश्चिमी हिस्सों के कई भागों में कल तक बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं भारत के शेष हिस्सों में बृहस्पतिवार तक बहुत तेज वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज अधिक उमस होने और तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। इस कारण पहाड़ों में अधिक भूस्खलन हो रहा है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने चारधाम के तीर्थयात्रियों और कांवड़ यात्रा पर निकले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है। 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अभिनव बिंद्रा को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। वहीं महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट में ग्रुप ए में श्रीलंका के दांबुला में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अभी ग्रुप ए में शीर्ष पर है।
भारतीय टीम अभी ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात को हराया है। एक अन्य मैच में इसी मैदान पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात आमने सामने होंगे। ये मैच दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। कल ग्रुप बी में मेजबान श्रीलंका ने मलेशिया को 144 रन से हरा दिया। ग्रुप बी में ही बांग्लादेश ने थाईलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
वहीं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में स्कॉटलैंड के तेज गेंदबाज चार्ली कैसल ने अपने पहले एक दिवसीय मैच में 7 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। कैसल ने डंडी में ओमान के साथ मैच में 5 ओवर और 4 गेंद में 21 रन देकर 7 विकेट लेकर इतिहास रचा। कैसल ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2016 में बांग्लादेश के साथ अपने पहले एक दिवसीय मैच में 16 रन देकर 6 विकेट लिए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने देश में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ से बाहर हो चुके राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि श्री बाइडेन का अब तक का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। सुश्री हैरिस ने यह बात व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अमरीका के कॉलेजों के चैंपियन एथलीट छात्रों को संबोधित करते हुए कही। वे कोविड-19 से उबर रहे श्री बाइडेन के पक्ष में बोल रही थीं। इस बीच जो की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अब तक 179 से अधिक कांग्रेसी डेमोक्रेट और 23 डेमोक्रेटिक गवर्नरों का समर्थन हासिल हो चुका है। पार्टी के नियमों के अनुसार उन्हें 3,900 पार्टी प्रतिनिधियों में से 3,000 का समर्थन हासिल करना होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हाल ही में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया है। सुश्री हसीना ने राजधानी ढाका में उद्योगपतियों से कहा है कि स्थिति में सुधार होने पर कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों और संपत्तियों की रक्षा के लिए उन्हें कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री का यह बयान आरक्षण कम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद आया है। देश में हिंसा के दौरान 147 लोग मारे गए। श्री अमरनाथ दर्शन करने के लिए 2,484 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर घाटी के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से रवाना हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद फरहत। बजट आज संसद में आर्थिक समीक्षा पेश, जनसत्ता सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। कई समाचार पत्रों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा कल संसद में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, करीब 80 लाख नौकरियां सृजित करने पर दिया जोर। वहीं हिन्दुस्तान की खबर है, वित्त मंत्री बोली, चुनौतियों के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया। दुकानों पर जरूरी नहीं नेम प्लेट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक की खबर राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का कांवड़ यात्रा मार्ग पर निर्देश, मालिक का नहीं भोजन का नाम लिखें। कमला का कमाल, अहम राज्यों में ट्रंप की बढ़त घटकर 10%, 24 घंटे में 15 और गवर्नर हैरिस के समर्थन में उतरे, दैनिक भास्कर सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने पेरिस ओलंपिक पन्ने पर तीरंदाजों की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, भारतीय धनुर्धरों के बाणों से निकली पदक धारा, 1988 से लेकर 2020 में ओलंपिक में हर बार खाली रहे हैं तीरंदाजों के हाथ, उम्मीदवारों का भार दीपिका कुमारी और धीरज पर, याददाश्त पर अटैक कर रहा मोबाइल, बच्चे हो रहे भुलक्कड़, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, डिजिटल डिमेंशिया के हो रहे शिकार, इंटरनेट एक्सपोजर से न्यूरॉन्स प्रभावित।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। सरकार ने कहा, हाल के वर्षों में बेरोजगारी दर में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से इस वर्ष की नीट यूजी परीक्षा में भौतिकी के एक प्रश्न से संबंधित एनटीए के फैसले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभिनव बिंद्रा को उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से पुरस्कृत करेगी। और श्रीलंका के दाम्बुला में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज शाम भारत का सामना नेपाल से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।